श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 11। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। इस संबंध में श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि काम रागा विवर्जित बल से क्या होता है। वो बल जिसमें काम और राग ना हो, उसके द्वारा व्यक्ति अपने दायित्वों का पालन कर पाता है। अन्यथा भोगों में आसक्ति होने के कारण व्यक्ति जो उसके मानव जीवन में दायित्व हैं उनका पालन नहीं कर पाता है। एक बात तो ये हमने इससे सीखी है। सो दूसरा चीज है, लेकिन इस बारे में अगर आप विचार करें तो ये काफी अच्छी बात है। ब्राह्मण का अलग बल है, क्षत्रिय का अलग बल है, वैश्य का अलग बल है और शूद्र का अलग बल है, और अपने धर्म का पालन कर पाना ये बहुत बड़ा बल उसके लिए चाहिए। नहीं तो हमेशा प्रायः इंद्रियां अपने तर्पण के लिए, संतुष्टि के लिए व्यग्र रहती हैं और व्यक्ति भी व्यग्र रहता है इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात है कि अगर हम इंद्रिय संयम कर पा रहे हैं, हम अपने जीवन में अप्लाई करें, अगर हम कुछ इंद्रिय संयम कर पाते हैं, धर्म के पथ पर चल पाते हैं, तो ये भगवान की शक्ति है। अगर हम नाम जप कर पाते हैं, मंगल आरती के लिए उठ पाते हैं, भजन कर पा रहे हैं, भागवत धर्म का भी आश्रय ले पा रहे हैं, तो ये भगवान की शक्ति है। और अगर उसका प्रचार कर पा रहे हैं तो ये भी भगवान की ही शक्ति है। बहुत सुंदर बात। अब जो दूसरा भाग है वो थोड़ा कठोर लग सकता है कुछ भक्तों को सुनने के लिए या कुछ व्यक्तियों को सुनने के लिए, लेकिन बताना हमारा कर्तव्य है क्योंकि भगवान बता रहे हैं। काम यानी कि स्त्री और पुरुष का संग बिना काम के नहीं होता है। जिसको काम नहीं है वो शादी नहीं करेगा, लेकिन इसका उपयोग किस लिए होना चाहिए ये व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, ये मेरे अनुसार नहीं है, शास्त्रों के अनुसार महीने में केवल एक बार संग करना चाहिए पत्नी से, और वो भी अगर संतान उत्पत्ति की इच्छा हो। तो लोग कहेंगे, आजकल के ज़माने में तो इस बात को लोग सुन करके बहुत अचंभित हो जाएंगे और गुस्सा भी हो जाएंगे, कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं। क्योंकि मानव जीवन भोग के लिए नहीं मिला है, भोग के लिए अन्य योनियां हैं, मानव जीवन तप करने के लिए मिला है, और इसका उपयोग, इस काम का उपयोग केवल कृष्ण भावना भावित संतान को की उत्पत्ति करने के लिए है, अन्यथा इसका कोई उपयोग नहीं है या नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है, श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि अगर पुरुष और स्त्री को संग करना है तो पुरुष और स्त्री यानी पत्नी और पति दोनों को 50-50 माला जप करना चाहिए, ताकि उनका चित्त शुद्ध हो और फिर वो संग करें कृष्ण भावना भावित संतान प्राप्ति के लिए। तो यहाँ से ही गर्भाधान संस्कार शुरू हो जाता है, जिससे एक शुद्ध आत्मा माँ के गर्भ में आकर्षित होती है, और उसके बाद भी आगे जाकर भी जो बच्चा बड़ा होता है तो बहुत सारे 10 विविध प्रकार के संस्कार होते हैं, जिसके द्वारा वो क्रमशः अधिक अधिक कृष्ण भावना भावित होती चली जाए। और आजकल के समाज में बहुत परेशानियाँ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि लोग इस प्रकार से गर्भाधान संस्कार और अन्य संस्कारों का पालन नहीं करते हैं। तो ये विचारणीय बात है, तो अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए इसको पालन करने का, ये इंस्ट्रक्शन गृहस्थों के लिए है। और अगर ऐसा कोई करता है तो कृष्ण की शक्ति से युक्त तो मानना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। ये चैवा सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतुगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। भगवान अभी तक जो श्लोक बोल रहे हैं उसमें भगवान ने अपने स्वरूप के बारे में बताया, जो कि श्लोक क्रमांक 6 से शुरू हुआ है और श्लोक क्रमांक 12 तक आके रुक रहा है, जिसमें भगवान अपने स्वरूप के बारे में बताए हैं। वो स्वरूप जो कि जीवात्मा और भौतिक प्रकृति दोनों से भिन्न है। अब यहां पे भगवान बता रहे हैं कि इस जगत में जितने भी गुण हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, मतलब आप प्रभाव देख रहे हो, वो तीनों गुणों के द्वारा है और तीनों गुण भगवान से आए हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का शरीर जो है वो भी गुणात्मक है। सिंपल शब्दों में, जैसे कि मेरे पिताजी का शरीर भौतिक था, मेरा शरीर भौतिक है, और उनके पिताजी का शरीर भौतिक है और फिर उनके पिताजी का शरीर भौतिक होगा, इस तरह सोचते सोचते अगर हम पीछे चले जाए तो ब्रह्मा जी का शरीर भी भौतिक है, सूक्ष्म है लेकिन भौतिक है। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मा जी के जो पिता हैं भगवान विष्णु कृष्ण, उनका शरीर भी भौतिक है। इस प्रकार का एक्स्ट्रापोलेशन इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, हम वो नहीं कर सकते। भले ही ये भौतिक जगत भगवान से आया है, लेकिन भगवान पूरी तरह से चिन्मय है। और ये कैसे हो सकता है, हमने पहले भी चर्चा किया था, हमें भगवान की अचिंत शक्ति को स्वीकार करना होगा। ये अचेतन है, भगवान चेतन है, और फिर भी भगवान इसके स्रोत हैं, ये स्वीकार करना पड़ेगा। तात्पर्य, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। गुण का अर्थ होता है रस्सी। जैसे कि आप लोग एक पुतली का, कठपुतली जानते होंगे, तो कठपुतली नृत्य करते हुए दिखती है, लेकिन उसके संग बहुत सारे रस्सियां होती, महीन महीन, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति इस जगत में गुणों के प्रभाव में है और वो गुणों के प्रभाव में कुछ क्रियाओं को कर रहा है। भले ही वो सोचे कि वो फ्री है, वो मुक्त है, लेकिन वो मुक्त नहीं है, वो गुणों के प्रभाव में ऐसा कार्य कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, वैसे तो इसकी विशेष चर्चा होगी आगे, लेकिन थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें। जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट है, वो ज्यादा प्रयास नहीं करता भौतिक वस्तुओं के लिए, तो उसके जीवन में सतोगुण का प्रादुर्भाव रहता है। जो लोग समझ पाते हैं आत्मज्ञान को, उनके जीवन में सतोगुण की आधिक्य होता है। जो व्यक्ति बहुत इस जगत में पैसा कमाना चाहता है, बहुत बड़ा बनना चाहता है, ये जानते हुए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो ऐसा व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित है। और जो व्यक्ति केवल सोता रहता है और प्राय पागल जैसा रहता है, ऐसा व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित है। तो हम लोग बाह्य रूप से सोच सकते हैं कि ये कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, ये व्यक्ति स्वतंत्र है और बस हो रहा है क्रिया, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे गुणों का क्रियान्वयन है। और हर व्यक्ति मिश्रित रहता है, रजोगुण से तमोगुण और सतोगुण के मिश्रण से प्रभावित रहता है अलग अलग मात्रा में। उदाहरण अर्थ, हाँ, यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से अद्भुत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। यानी अधीन नहीं होते, इसका अर्थ बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भगवान आते हैं यहाँ पे, तो भगवान जब क्रिया कर रहे हैं तो वो गुणों के द्वारा एक्टिवेटेड नहीं है। ये फिर समझ लीजिए हमारी बात को, हमारी बात मतलब जो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब हम यहाँ पे क्रिया करते हैं तो गुणों के अधीन होकर करते हैं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आते हैं तो उनकी क्रियाएं जो हैं वो गुणों के अधीन नहीं होते। मैं इस तत्व को समझने के लिए आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि शब्द प्रमाण को हम कैसे स्वीकार करते हैं। शब्द प्रमाण को हम अपने कान से तो स्वीकार करते हैं, लेकिन इंद्रियां जैसा बोल रही हैं उस पर श्रद्धा न रख करके जो इन्फॉर्मेशन हमें कान से प्राप्त हो रही है प्रामाणिक स्रोतों से, उस पर विश्वास करते हैं। तो ऐसा लग सकता है कि भगवान श्री कृष्ण तो एक सामान्य पुरुष हैं, वो तो गोपियों के संग रासलीला कर रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, ऐसे करके। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए शास्त्र के आधार पर इस तत्व को समझते हुए कि भगवान श्री कृष्ण ये सब कर तो रहे हैं, लेकिन गुणों के अधीन होकर नहीं कर रहे, इसीलिए उनकी लीला है और हमारे कर्म होते हैं। हमें बाध्य होना पड़ता है गुणों के प्रभाव में, प्रेशर में काम करने के लिए, और भगवान को कोई प्रेशर इस प्रकार का नहीं होता है, अपितु वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं अपने कार्य को करने के लिए। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वो भी मुक्त हो जाता है। जो ये बात समझ लेता है कि भगवान कृष्ण की लीलाएं दिव्य हैं, भगवान के कृष्ण के कर्म दिव्य हैं, वो लीला है, ना कि गुणों के प्रभाव में वो कार्य कर रहे हैं, वो व्यक्ति भी दिव्य हो जाता है। तो कैसे समझेंगे हम? शास्त्र के वचनों पर श्रद्धा रख करके। इसको समझावट कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को श्रीमद् भागवत में भी बोला गया है, भक्त्या श्रुत ग्रहितया, भक्ति के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, श्रुत ग्रहितया मतलब वैदिक प्रमाण को सुन करके। उदाहरणार्थ राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु वे ये उन्हें प्रभावित नहीं करते, यह भगवान का विशेष लक्षण है। प्रभावित नहीं करते, जहां तक मैं समझता हूं, समझ गए होंगे, इसका अर्थ ये है कि भगवान की क्रियाएं इन गुणों के द्वारा एक्टिवेटेड नहीं होती हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान जब लीला करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक मनुष्य की लीला कर रहे हैं। सारे कार्य उनके मनुष्य के नहीं होते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता जरूर है कि वो एक सामान्य मनुष्य की तरह कार्य कर रहे हैं। जैसे कि यहां भगवान बोल रहे हैं, धर्म अविरुद्ध भूतोषि कामोस्मि भरतर्षभ, जो धर्म के अविरुद्ध है वो कुबह काम हो। लेकिन जब हम गोपियों से लीला कर रहे हैं, गोपियों के संग रासलीला करते हैं, तो व्यक्ति क्वेश्चन करेगा, अरे भाई ये धर्म कहाँ से आ गया? तो ये व्यक्ति को शास्त्र सुन करके समझ में आना चाहिए कि भगवान की जो रासलीला है इसकी चर्चा सुखदेव गोस्वामी जैसे महान विरक्त पुरुष कर रहे हैं। तो अगर कोई गुणीभूत यानी गुणों के अंतर्गत कोई कार्य होता तो उसकी चर्चा करने में उनकी कोई रुचि नहीं होती। तो इसीलिए फिर से आंखों से और या कान से सुन के भी जो आपको लग रहा है उस पर विश्वास ना करें, जैसा कि शास्त्र बोल रहा है उस पर विश्वास करें, तब भगवान की लीलाओं को हम ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। और क्यों हम सीधे नहीं समझ सकते भगवान को, बिना शास्त्र को सुने क्यों हम भगवान को नहीं समझ सकते, उसके बारे में अगले श्लोक में चर्चा होगी।